नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप पंकज धीमान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच लगभग 21 घंटे तक चली वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बताया कि बातचीत में कोई समझौता नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि मुख्य मतभेद ईरान से परमाणु हथियार न बनाने की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को लेकर है। श्री वेंस ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के समक्ष अंतिम प्रस्ताव रखा है और अब ईरान की प्रतिक्रिया का इंतजार है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि उर्वरक संयंत्रों को आवंटित कुल गैस की मात्रा में 5% की वृद्धि की जा रही है। इससे यह 6 महीने की औसत खपत के लगभग 95% तक पहुंच जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि घरेलू गैस की आपूर्ति भी सामान्य है। मार्च से अब तक लगभग 4,15,000 PNG कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जबकि लगभग 4,55,000 अतिरिक्त ग्राहकों ने नए कनेक्शनों के लिए पंजीकरण कराया है। मंत्रालय ने बताया कि LPG की जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए देश भर में कार्रवाई जारी है। केंद्र सरकार ने डीजल पर निर्यात शुल्क 21.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 55.5 रुपये कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि विमानन ईंधन पर भी निर्यात शुल्क 29.5 रुपये से बढ़ाकर 42 रुपये कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल पर निर्यात शुल्क 0 रहेगा। केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा पश्चिम एशिया क्षेत्र में संचालित भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं। भारतीय ध्वज वाले LPG पोत जग विक्रम ने कल सुरक्षित रूप से हुर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर लिया है। इसमें 24 नाविक सवार हैं और यह लगभग 20,400 मीट्रिक टन LPG लेकर आ रहा है। इसके 15 अप्रैल को मुंबई पहुंचने की संभावना है। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर अशीम कुमार घोष ने कल जनगणना गतिविधियों से संबंधित एक कैलेंडर जारी किया। हरियाणा जनगणना एवं नागरिक पंजीकरण निदेशक ललित जैन ने बताया कि उन्होंने इस दौरान राज्यपाल को जनगणना 2027 से संबंधित गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। हरियाणा राज्य में स्वगणना की सुविधा 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक उपलब्ध रहेगी। सभी नागरिक मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से घर बैठे स्वगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके पश्चात 1 मई से 30 मई 2026 तक पूरे राज्य में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के अंतर्गत प्रगणक प्रत्येक घर का दौरा करेंगे। इस मौके पर राज्यपाल ने नागरिकों से आह्वान किया कि वे स्वगणना में अधिक से अधिक भागीदारी करें, क्योंकि यह अत्यंत सुविधाजनक एवं सुगम है। इससे समय और संसाधनों की बचत भी होगी। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच के चलते महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण मिलने का विधेयक पारित होने जा रहा है। इससे पहले महिलाओं को 33% आरक्षण देने के नाम पर केवल बातें होती रहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इसको वास्तविक रूप दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे महिलाएं सशक्त होंगी, जो देश की आबादी का 50% है। महिलाओं के नेतृत्व में समाज और अधिक समृद्ध तथा खुशहाल होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री भिवानी में पत्रकारों को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण देना एक ऐतिहासिक कदम है। इससे समाज में बड़ा ही सकारात्मक क्रांतिकारी बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष को भी इस बिल का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में केंद्र और प्रदेश सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक तरह की योजनाएं लागू कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से न केवल देश में लिंगानुपात में रचनात्मक सुधार हुआ है, बल्कि समाज में भी महिलाओं को उचित स्थान मिल रहा है। आज महिलाएं पंचायत से लेकर लोकसभा तक जनता का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। भाजपा की वरिष्ठ नेत्री एवं हरियाणा महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष प्रतिभा सुमन ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 भारतीय लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रतीक है, जो महिलाओं को नीति की लाभार्थी से नीति की निर्माता बनने की दिशा में सशक्त करेगा। वह कल रोहतक में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रही थी। सुश्री प्रतिभा सुमन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पारित यह अधिनियम केवल एक संवैधानिक संशोधन नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का आधार है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।